From the conference center at Temple Square,
Salt Lake City में Temple Square के conference center से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे की 182वीं अर्थवार्षिक जनरल कॉन्फ्रेंस है। इस सत्र के वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए हैं और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप घायल मंडली द्वारा होगा। ये प्रसारण बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।
President Henry B. Eyring,
अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you this
afternoon. भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के 182वें अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन के 5वें और समापन सत्र में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस कॉन्फ्रेंस के संचालन करता है, ने मुझे इस सत्र का संचालन करने को कहा है। हम आप सभी को गिरजाघर के सदस्यों और सभी मित्रों का संसार भर में गर्मजोशी से अभिनंदन करते हैं, जो इस प्रसारण में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा भाग ले रहे हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मक व्हीलवर के निर्देशन के अंतर्गत गायन मंडली के द्वारा रायन मर्फी और बोनी गुडलेफ और लिंडा मार्गरेट ऑर्गन पर के साथ दिया जाएगा। गायन मंडली सभा का आरंभ द डे डॉन इज ब्रेकिंग गीत गाकर करेगी, जिसके पश्चात प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर ऑक्टावियानो टेनोरियो द्वारा दी जाएगी। इस सम्मेलन में जिन्हें 70 के एक सदस्य के रूप में सेवा कार्यकाल से मुक्त किया गया था, गायक मंडली तब गाएगी डिड यू थिंक टू प्रे। गीत गाने के बाद और हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स और एल्डर रिचर्ड स्कॉट 12 प्रेरित के परिषद से सुनेंगे। उसके बाद भाई रसल टी ऑस्कर्सॉप रविवर विद्यालय के जनरल अध्यक्ष होंगे।
The clouds are Our dear Father in heaven,
हम आपके मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं, तब हमें है और आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं उनके जो इसमें भाग दे रहे हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार इसको स्ट्रेंथन कर सके और इस कार्य को आगे बढ़ा सके जो आपके पुत्र यीशु मसीह ने कहा है। हम इसके सीख सकें और आगे बढ़ सकें सफाई से और अपनी स्वर्ग इच्छा से, और जिससे हम आपके पवित्र मंदिर में प्रवेश कर सकें और पवित्र अनुबंध बना सकें और अपने पूर्वजों के लिए कार्य कर सकें। हमें आशीष दीजिए हमारे भविष्यता थॉमस मानसन के लिए, उनकी मार्गदर्शन के लिए और उनकी सहायता के लिए और उनकी हर काम के लिए। इस बात आमीन।
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
एक मसीह बनना इसका क्या अर्थ है? एक मसीह को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास होता है कि वह व्यक्तिविकता में परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों के लिए सफर करने के लिए प्रेम का सर्वोत्तम क्रिया को करने के लिए जिसे हम प्रायश्चित के रूप में जानते हैं. एक मसीह को विश्वास होता है कि परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पश्चाताप, दूसरों को क्षमा, आज्ञाओं का पालन कर और अनंत जीवन पा सकते हैं. मसीही शब्द होना का मतलब मसीह के नाम को अपने ऊपर लेना है. हम इसे बपतिस्मा लेने के द्वारा और उनके द्वारा जिनके पास पौरोहित्य अधिकारी है हाथों को रखकर पवित्र आत्मा के उपहार पाने के द्वारा करते हैं. एक मसीही को युगा युगों युग तक जाना जाता है. परमेश्वर के भविष्यवक्ता हमेशा से यीशु मसीह की गवाही देते हैं. यीशु वही यीशु है स्वर्गीय पिता के साथ. 1820 सन में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के सामने और सुसमाचार और पुनरुत्थान और अपने वास्तविक गिरजे की स्थापना करने आए थे. धर्मशास्त्र और जोसेफ स्मिथ की साक्षी द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता के पास मांस और हड्डी का संपूर्ण शरीर है. यीशु मसीह मांस में उसका एकलौता पुत्र है. पवित्र आत्मा आत्मा में श्रेष्ठ है जिसका काम पिता और पुत्र की गवाही देना है. परमेश्वरत्व के तीन अलग और भिन्न अस्तित्व हैं, उद्देश्य में एक हैं. इस सिद्धांत के साथ हमारे विश्वास की नींव क्या इसमें कोई शक या विवाद है कि हम मसीही हैं? अब तक प्रत्येक मसीही के लिए एक साधारण प्रश्न अब भी है, हम किस तरह के मसीही हैं? दूसरे शब्दों में, कैसे हम मसीह के अनुयायी होते हैं? दो मसीही शिष्यों के अनुभव को मेरे साथ विचारें. गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन का जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंदियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे. और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चल आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. मसीही के रूप में आज हमारे पास सीधा तुरंत और दृढ़ता से करने के मौके हैं, जैसे पत्रस और एंड्रियास ने किए थे. वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. हमें भी बुलाया गया है अपने जालों को छोड़कर, सांसारिक आदतों, रीति रिवाजों, परंपराओं को नकाराकर. हमें अब भी अपने पापों को त्याग करने के लिए बुलाया गया है. जब यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाया था, उसने उनसे कहा, जो कोई मेरे पास पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले. अपने नास्तिक व्यवहार को नकारना पश्चाताप की शुरुआत होती है, जो महान हृदय परिवर्तन लाता है. जब तक हम शैतान के कार्यों को नहीं करेंगे, यह परिवर्तन धर्म परिवर्तन कहलाता है. सिर्फ उद्धारकर्ता के द्वारा ही संभव है. यीशु ने वादा किया था, और अगर लोग मेरे पास आएंगे जब मैं उनकी त्रुटियों उन्हें दिखाऊंगा और जो मेरे सामने दिन बनते हैं और मुझे में विश्वास करते हैं, जब उनके लिए मैं निर्बल बातों का सबल कर देता हूं. जैसे हम मसीह में नए बनते हैं, हमारा स्वभाव बल जाता है और हम वापस पूरा रास्तों पर जाने चाहोगे.
Faithful Christians will always be blessed to experience difficulties.
यहाँ तक विश्वासी मसीह हमेशा परेशानियों और निराश होते हैं से आशीष होते हैं जब यह उन्नति की चुनौतियां आएगी हमें वापस पुराने रास्तों पर जाने की लालसा हो सकती है उद्धारकर्ता उस पर चढ़ाए जाने के बाद वह औरत के सामने आया और उससे बोला कि भाई उसे गलीली में पाएंगे जब पतरस वरिष्ठ प्रेरित गलीली को लौट चले वह भी वापस आया जैसे वह जानता था जिसे वह आराम से करता था मैं पकड़ने जाता हूँ उसे बताया और अपने साथ कई शिष्यों को लाया निंसदेह पतरस और अन्य रात भर मछली पकड़ते रहे बिना किसी मछली को फंसाए अगले दिन यीशु तट पर आए और उन्हें पानी के उस तरफ बुलाया नाव के दाहिनी ओर जाल डालो यूहन्ना ने तुरंत उद्धारकर्ता की आवाज को पहचान लिया और पतरस जल्द ही पानी में उतर और तैरकर किनारे पहुंच गया बाकी शिष्य जो नाव पर बैठे थे उसके निर्देश अनुसार किया और शीघ्र ही उन्होंने पाया कि उनका जाल चमत्कारी तरीके से बहुतायत से भर गया था मसीही जो कम विश्वासी तरीकों से अपने पुराने बातों में लौट जाते हैं पत्रस के विश्वासी होने के उदाहरण पर विचारें देरी ना करें आओ सुने और स्वामी को बुलाने की आवाज को पहचाने तब सीधे उस तट लौटें और एक बार फिर उसकी अपार आशीषें को पाएंगे जैसे भाई किनारे लौटे थे उन्होंने मछली और रोटी के पर्व को पाया था आओ भोजन करो उद्धारकर्ता ने निमंत्रण दिया जैसे उसने उन्हें खिलाया उसने पतरस से तीन बार पूछा हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र क्या तू मुझसे प्रेम रखता है जब पतरस ने अपना प्रेम दिखाया उद्धारकर्ता ने उससे आग्रह किया मेरी मेमनों को चरा मेरी भेड़ों को चरा आज हर मसीही को मसीह की यह बुलावट है मेरी मेमनों को चरा मेरे भेड़ों को चरा मेरे सुसमाचार युवा और बड़ों के साथ सामान्य तरीके से बांटें ऊपर उठाएं आशीषें दें आराम प्रोत्साहन दे और उन्हें बनाए विशेषकर उनको जो हमसे भिन्न करने और को सोचते हैं और विश्वास करते हैं हम उनकी भेड़ों को अपने घर में जैसे हम सुसमाचार को जीते हैं के द्वार चराते हैं आज्ञाओं का पालन कर प्रार्थना कर मर्षत्रों का अध्ययन करें और उसके प्रेम की चेष्टा करके हम उसकी भेड़ों के गिरजाघर को चराते हैं जिसके हम पौरोहित्य परिषद में सहकारी संस्थाओं में सेवा करते हैं और हम पूरे संसार में भेड़ों के मसीही होने के द्वारा विधाव से भेंट कर पिता रहित गरीबों और सभी जरूरतमंदों की सेवा करने में अभ्यास कर चराते हैं बहुतों के लिए मसीही होने की पुकार याचना हो सकती है यहां तक प्रोत्साहन से भरी परंतु हमें डरना या कमजोर महसूस नहीं है उद्धारकर्ता ने वादा किया है कि वह हमें अपने काम करने के लिए एक सा बनाएगा उसने कहा मेरे पीछे आओ और मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा उसका अनुसरण करते हुए वह हमें उपहार हुनर और उसकी इच्छा अनुसार करने की शक्ति देगा हमें हमारे क्षेत्र से बाहर जाकर और वह कार्य करना जिसे पहले कभी नहीं किया हो की अनुमति देता है इसका मतलब है पड़ोसी के साथ सुसमाचार बांटना उन्हें बचाना जो आत्मिक तौर से खो गए पूरे समय को प्रचार कार्य करना मंदिर में काम करना विशेष जरूरत के बच्चों को बढ़ाना उड़ाऊ पुत्र से प्रेम परेशान साथी की सेवा करना मतभेद खत्म करना या विपत्ति में पीड़ा झेलना इसका मतलब है अपने आप को उसके बुलाए जाने पर जवाब देने को तैयार रहना कहने के द्वारा मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम चाहोगे मैं वही कहूंगा जो तुम कहोगे और मैं वही करूंगा जो तुम करवाओगे मैं वही बनूंगा जो तुम बनाओगे वही बनो जो स्वर्ग पिता बनाना चाहता है हमें यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहिए अनुसरण है। मैं साक्षी देता हूं कि लगातार हमें अपने पीछे चलने को बुलाता रहेगा। यदि आप अभी अंतिम दिनों के संतों के मसीहों मसीही होने के वचन के बारे में सीखते हैं, या आप यदि गिरजा के पूरी तरह से भाग नहीं लेते और उसका द्वारा अनुसरण करना चाहते हैं, डरो मत। उद्धारकर्ता के पहले नए शिष्य सभी गिरजा के सदस्य थे, नए नए उसके सुसमाचार के परिवर्तित हुए थे। यीशु ने धैर्य से प्रत्येक को शिक्षा दी थी। उसने उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद की थी। उसने उन्हें दोस्त बुलाया, उनके लिए अपना जीवन दे दिया, और उसने वैसा भी किया, वही आपके लिए भी किया है। मैं गवाही देता हूं कि उसके अनंत प्रेम और महिमा के द्वारा हम और अधिक मसीही अनुयायी बन सकते हैं। निम्नलिखित मसीही समान गुणों पर विचारें। हम कैसे अपने आप को भीतर बल ला सकते हैं? मसीही प्रेम। उद्धारकर्ता सबका मूल्य करता है, सभी के लिए दयालु और कृपालु। उसने निन्यम्बे को छोड़ एक को ढूंढने गया। उसने सिर के बल भी गिने हुए हैं। मसीही विश्वास, लालच, परीक्षा और यातनाओं के विरोध। उद्धारकर्ता ने अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा और उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार ईमानदारी रहना चुना है। मसीही बलिदान। जीवन भर उद्धारकर्ता ने अपना समय, अपनी शक्ति दी थी, और अंत में यहां तक भी प्रायश्चित कर सारे परमेश्वर के बच्चों के पुनरुत्थान के लिए और अनंत जीवन पाने के मौके के लिए अपने आप भी दे दिया था। मसीही देखभाल। अच्छे सामरी के समान उद्धारकर्ता हमेशा बचाने में प्रेम और आसपास के लोगों को पोषण करने के लिए पहुंचते थे। उनके सांस्कृतिक मत या परिस्थितियों से सावधान रहकर मसीही सेवा, चाहे कुएं से पानी निकालना हो, मछली को खाना पकाना हो, गंदे पैरों को धोना हो, उद्धारकर्ता अपना सारे दिन सेवा करने में बिताते थे, थके हुए को उठाना और कमजोर को बल देने में। मसीही धैर्य। अपने खुद दुख और तकलीफ में उद्धारकर्ता अपने पिता का इंतजार करते थे। हमारे लिए धैर्य के साथ वह हमें अपने खुद के घर आने का इंतजार करते हैं। मसीही शांति। उसके प्रचार के दौरान उसने समझदारी से और शांति का आग्रह किया, विशेषकर उसके शिष्यों के बीच। उसने सिखाया कि मसीही दूसरे मसीही के साथ मतभेद नहीं कर सकता है उनके विवादों के बावजूद। मसीही समाधान। उसने हमें सिखाया कि जो हमें अभिशाप देते हैं, जो आशीष दो, और हमें प्रार्थना का रास्ता दिखाने के द्वारा कि जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था को क्षमा करके। मसीही परिवर्तित। पतरस और एंड्रियास के समान बहुतों को सुसमाचार को सुनकर सच्चाई को जाना है। वह तुरंत परिवर्तित हुए थे। औरों के लिए उसने समय अधिक लिया। जोसेफ स्मिथ को प्रकटीकरण द्वारा उद्धारकर्ता ने सिखाया था कि परमेश्वर ही ज्योति है, और जो ज्योति को प्राप्त करता है और परमेश्वर में लगा रहता है और अधिक ज्योति प्राप्त करेगा, और वह ज्योति तेज और तेज होती जाएगी संपूर्ण दिन तक। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति और मुक्तिदाता है, सच्चाई की आत्मा। मसीही अंत तक। उसके सभी दिनों में उद्धारकर्ता ने कभी भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करने में ना नहीं की, परंतु उसके नाश्वर जीवन में वे लगातार नेकता, अच्छाई, कृपा और अंत तक सच्चाई करता रहा। यह कुछ चरित्र हैं उनके लिए जो उद्धारकर्ता की आवाज को सुनते हैं और मन लगते हैं। जैसे पृथ्वी का एक विशेष साक्षी है, मैं अपनी मसीही गवाही देता हूं कि वह आपको आज बुला रहा है, मेरे पीछे आओ। आओ चलें उस पथ पर जो कि अनंत आनंद, खुशी और स्वर्गीय पिता के उसके राज्य में हमेशा के जीवन की ओर ले जाए। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के नाम में आमीन।
Thank you, Elder Hales. We love you. The Lord revealed.
Elder Hales, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को बपतिस्मे की पवित्र धर्म विधि के संबंध में उत्तम सिद्धांत प्रकट किया था। वो सिद्धांत ऐसे समय में आया जब दूसरे गिरजे सिखा रहे थे कि मृत्यु ही व्यक्ति की नियति को अटल और अनंत रूप से निश्चित करती है। उन्होंने सिखाया कि बपतिस्मा प्राप्त करने वालों को अंतहीन आनंद मिलता है, जबकि अन्य बिना मुक्ति की आशा के अनंत कष्ट झेलते हैं। प्रभु का प्रकटीकरण की उचित प्रीस्टहुड अधिकार के द्वारा मृतक के लिए प्रतीकात्मक रूप से बपतिस्मा किया जा सकता है। उसके इस कथन के औचित्य को पूरा करता है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रतीकात्मक बपतिस्मा दयापूर्वक उन सभी योग्य मृतक के लिए आवश्यक धर्म विधि प्रदान करता है जिन्होंने इसे पृथ्वी पर प्राप्त नहीं किया था। ये महिमापूर्ण सिद्धांत यीशु मसीह के प्रायश्चित की व्यापक प्रकृति की अन्य गवाही है। उसने प्रत्येक पश्चातापी प्राणी के लिए उद्धार को उपलब्ध कराया। उसके प्रायश्चित ने मृत्यु पर विजय पाई और वो योग्य मृतक को प्रतीकात्मक रूप से उद्धार की सभी धर्म विधियों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। लगभग 150 वर्ष पहले लिखी एक पत्री में जोसेफ स्मिथ ने कहा था, संतों के पास अपने उन रिश्तेदारों के स्थान पर बपतिस्मा लेने का सौभाग्य है जो मर चुके हैं। वे आत्मा में सुसमाचार प्राप्त कर सकते हैं उनके द्वारा जिन्हें उन्हें सिखाने का अधिकार दिया गया है। वे संत जो अपने मृतक रिश्तेदारों के स्थान पर इसे नहीं करते हैं, वे अपने स्वयं के उद्धार को जोखिम में लेकर ऐसा कर रहे हैं। भविष्यवक्ता इलाया ने इस प्रतीकात्मक कार्य का अधिकार जोसेफ स्मिथ को किटलैंड मंदिर में प्रभु की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए दिया था कि वो बच्चों के हृदयों में उनके पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा को बोएगा और बच्चों के हृदय अपने पूर्वजों की ओर मुड़ेंगे। जोसेफ स्मिथ और उनके बाद के भविष्यवक्ताओं को आगे दिए गए प्रकटीकरण के द्वारा मंदिर कार्य की समझ, व्यवस्था और पारिवारिक इतिहास जो कि इसकी सहायता करता है दिए। जोसेफ स्मिथ से लेकर अब तक प्रत्येक भविष्यवक्ता ने सभी धर्म विधियों को अपने स्वयं के लिए और अपने मृत पूर्वजों के लिए पाने की अनिवार्यता पर जोर दिया है। मंदिर और पारिवारिक इतिहास का कार्य दो भागों में बटा कार्य है। ये बपतिस्मे और धर्म विधि और पवित्र आत्मा के उपहार के समान एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सदस्य स्वास्थ्य या मंदिर से दूरी के कारण इन दोनों कार्यों को नहीं कर पाते हैं। हमें पहले अपने स्वयं के उत्कर्ष के लिए जरूरी प्रीस्टहुड मंदिर धर्म विधि कार्य को पूरा करना चाहिए। तब हमें उनके लिए आवश्यक कार्य करने चाहिए जिन्हें जीवन में सुसमाचार को स्वीकार करने का मौका नहीं मिला। दूसरों के कार्य दो चरणों में पूरे किए जाते हैं। पहले पारिवारिक इतिहास की खोज करके अपने प्रियजनों की खोज करना और दूसरा मंदिर धर्म विधियों को पूरा करके उन्हें वही मौका देना जो जीवित लोगों को मिलता है। फिर भी गिरजे के बहुत से सदस्य हैं जिनके पास मंदिर जाने के अवसर सीमित हैं। जो कुछ संभव है उसे वे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वे पारिवारिक इतिहास की खोज करते हैं और दूसरों से मंदिर धर्म विधि को पूरा कर पाते हैं। इसके विपरीत कुछ सदस्य हैं जो मंदिर के कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने स्वयं के पारिवारिक इतिहास की खोज नहीं कर पाते। यद्यपि वो दूसरों की सहायता करने की दिव्य सेवा करते हैं, वे अपने स्वयं के मृत रिश्तेदार की खोज न करके उन आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं, जिसे अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता दिव्य स्वरूप से बताते हैं। मैंने सीखा था कि जो पारिवारिक इतिहास खोज में व्यस्त रहे और फिर उनके लिए मंदिर धर्म विधियों को पूरा करते हैं, उनके नाम उन्हें मिलते हैं जो दो भाग की आशीषों को पाने के लिए अतिरिक्त आनंद को समझ सकेंगे। स्वर्ग के पिता चाहते हैं हम में प्रत्येक इस महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कार्य से दोनों भागों की आशीषों को प्राप्त करें। उसने इसके योग्य होने के लिए दूसरों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है। इन आशीषों को प्राप्त करना आपके और मेरा ऊपर निर्भर है। मंदिर में किया गया कोई भी कार्य उचित रूप से व्यतीत किया गया समय है, लेकिन अपने पूर्वजों में से एक के लिए प्रतीकात्मक से धर्म विधियां प्राप्त करना मंदिर में व्यतीत समय को अधिक पवित्र करेगा और अधिक महान आशीषें प्राप्त होंगी। प्रथम अध्यक्षता ने घोषणा की है, हमारी सर्वश्रेष्ठ जिम्मेदारी हमारे स्वयं के पूर्वजों को खोजना और उनके लिए धर्म विधि की पहचान करना है। क्या आप युवा लोग अपने जीवन से बुराई के प्रभाव को मिटाने का पक्का तरीका चाहते हो? स्वयं को अपने पूर्वजों की खोज करने में व्यस्त रखो, मंदिर के उपलब्ध पवित्र प्रतीकात्मक धर्म विधियों के लिए उनके नामों को तैयार करो और फिर मंदिर जाकर उनके प्रतिनिधि बनकर बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के उपहार को पाने की धर्म विधि को प्राप्त करो। जब आप बड़े हो जाओगे, आप अन्य धर्म विधियों में भी भाग लेने के योग्य होंगे। आपके जीवन से बुराइयों के प्रभाव को मिटाने के लिए इससे अधिक बड़ी सुरक्षा मैं नहीं सोच सकता। रोस्तोप रूसी मिशन में प्रत्येक युवा को 2000 नामों की सूची देने और फिर अपने स्वयं के परिवार से कम एक नाम मंदिर धर्म विधियों के योग्य करने के लिए निमंत्रित किया गया। जिन्होंने इस लक्ष्य को पूरा किया उन्हें लंबी यात्रा पर नए की भी क्रेन मंदिर जाने का निर्णय दिया गया। इस युवा ने अपने अनुभव को बांटा, मैं अपना बहुत सा समय कंप्यूटर गेम्स खेलने में व्यतीत करता था। जब मैंने सूची बनाना शुरू किया मुझे गेम्स खेलने का समय नहीं मिला। पहले मैंने सोचा, ओ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ मेरा कंप्यूटर गेम्स खेलने का शौक खत्म हो गया था। वंशावली कार्य वह कार्य है जिसे हम यहाँ पृथ्वी पर करते हैं और ये स्वर्ग तक कायम रहेगा। बहुत से विश्वासी संतों ने अपने परिवार की वंशावली की खोज का कार्य किया है और फैमिली सर्च की संचय करने की विशेषता का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों की धर्म विधि को प्रतिनिधि के रूप में करके सेवा करते हैं। नामों के संचय से लोगों को पूर्वजों के लिए धर्म विधियां करने का मौका और नजदीकी रिश्तेदारों को उन्हें करने के लिए उचित समय मिलता है। वर्तमान में लगभग 1,20,00,000 नाम और इनसे संबंधित करोड़ों धर्म विधियों को करने के लिए संचित किया हुआ है। कई नामों को सालों से संचित किया गया है। जिन पूर्वजों के नाम धर्म विधियों के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं निसंदेह वे उत्साहित और बहुत खुश होते हैं। यद्यपि वे तब बहुत खुश नहीं होते हैं जब उन्हें अपनी धर्म विधियों को पूरा होने के लिए निरंतर प्रतीक्षा करनी पड़ती। जिनके पास बहुत अधिक नाम है हम उन्हें नामों को बांटने की सलाह देते हैं ताकि अपने आपके परिवार के निकट संबंधी या वार्ड और स्टेक के सदस्य उस कार्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकें। आप ऐसे मंदिर कार्ड को वार्ड और स्टेक के उन सदस्यों को दे सकते हैं जो मदद करना चाहते हैं, या कंप्यूटर में फैमिली सर्च में जाकर मंदिर में सीधे अपना नाम भेज सकते हैं। दूसरे विकल्प का उपयोग कैस्पर वियोमिंग की सिंडी ब्लेविनस कई सालों से कर रही हैं। बहन ब्लेवनिस ने किशोरावस्था में बपतिस्मा लिया था और गिरजे में शामिल होने वाली वो अपने परिवार की एकमात्र सदस्य हैं। उन्होंने बहुत बड़ी वंशावली के कार्य को पूरा किया था, लेकिन उनके पास अपने परिवार और निकट के रिश्तेदारों के इतने अधिक नाम थे जिन्हें वो अकेले पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए बहन सिंडी ने नामों को मंदिर में दे दिया, जिसके बारे में उन्होंने बताया गया कि वे कुछ हफ्ते में ही उनके घर के निकट एक मंदिर में पूरे हो गए। वो कहती हैं उन्हें ये सोचकर अच्छा लगता है कि उनके अपने वार्ड और स्टे के मित्रों और पड़ोसियों में ही वे लोग हैं जिन्होंने उसके पूर्वजों के कार्य को पूरा होने में मदद की है। वो उनके कार्य की प्रशंसा करती हैं। मेरी प्रिय पत्नी जीनन को पारिवारिक इतिहास खोज करना अच्छा लगता है। जब हमारे बच्चे छोटे थे, वो बच्चों के साथ बिताने के समय को मित्रों को देती थी ताकि वो हर हफ्ते कुछ घंटे हमारे परिवार की वंशावली की खोज के कार्य में लगा सके। हमारे सबसे छोटे बच्चे के घर से जाने के बाद उसने अपनी दैनिकी में लिखा, मैंने अभी निर्णय लिया है और मैं खड़े होकर इसके बारे में चिल्लाना चाहती हूँ। माई का सोने का कमरा मेरा वंशावली का कार्य करने का कमरा बन गया है। ये अभिलेख को रखने और कार्य करने के लिए ठीक है। अब मेरा जीवन आवश्यक पारिवारिक खोज और मंदिर के नाम देने पर केंद्रित रहेगा। मैं इसे करने के लिए बहुत उत्साहित और उत्तेजित हूँ। दैनिकी में आगे लिखा है, मेल ऑलसन के पारिवारिक इतिहास कार्यालय में मेरे लिए चमत्कार हुआ। उन्होंने मुझे मेरे सभी जान पहचान के रिश्तेदारों की वंशावली की प्रिंट को दिया, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा वंशावली संस्था को भेजा गया था। उनमें से अधिकतर गिरजे के चार पीढ़ियों के कार्यक्रम के अभिलेख से मिले थे, जिसे गिरजे में कई सालों तक किया गया था। मैं इतने बड़े काम के विचार से घबरा गई हूँ कि अपने सभी पूर्वजों की खोज के अभिलेख को पारिवारिक संगठनों से एकत्रित करके बांटने के लिए कंप्यूटर में डालना होगा और वे सब अच्छी तरह से प्रिंट किए हुए मेरे सामने डेस्क पर रखे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न और व्याकुल थी कि मैं अचंभित होकर बैठी रही और मैं इतनी खुश थी कि रोने लगी। उनके लिए जिन्होंने इतनी मेहनत से कष्ट उठाकर 30 साल तक खोज के इन सभी नामों को कंप्यूटर में डालना वास्तव में बहुत रोमांचक था। और जब मैं उन सैकड़ों हजारों लोगों के बारे में सोचती हूँ जो अभी या जल्द ही कंप्यूटर में और निजी खोज डिस्क में विशाल जनगणना डाले जाएंगे, मैं बहुत ही उत्तेजित हूँ। ये सचमुच में प्रभु का कार्य है और वो इसका निर्देशन कर रहा है। मैं इस उत्कर्ष कार्य के फलों का स्वाद ले चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि लाया ने हमारे हृदयों को बांधने और हम में से प्रत्येक को उसके उन पूर्वजों से जोड़ने के लिए जोसेफ स्मिथ को अधिकार दिया था जो हमारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धारकर्ता द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए पृथ्वी पर पवित्र मंदिरों में हमारे प्रयासों से हमारे जनक उन रक्षक धर्म विधियां प्राप्त करते हैं जो उन्हें अनंत सुख का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। अतीत में इस कार्य की पवित्रता की गहन दृढ़ता से उत्तेजित होकर लोगों ने उत्साह से उस चुनौती का सामना किया था जो कि पूरे नेब्रास्का में अकेले ही फसल काटने के समान थे। अब बहुत से बड़े बड़े संगठन काम कर रहे हैं। एक साथ मिलकर हम इस आवश्यक कार्य को पूरा कर सकते हैं और पूरा करके रहेंगे। मैं गवाही देता हूं कि इलाया की आत्मा संपूर्ण संसार में कई पिताओं के बच्चों के हृदयों को स्पर्श कर रही है, जिससे मृतकों के लिए किया जाने वाला कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने अपने स्वयं के पूर्वजों के कार्य के विषय में प्रार्थना की है? अपने जीवन से उन बातों को निकाल लें जो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा करने का निश्चय लें जिसके परिणाम अंततः होंगे। हो सकता है आप अपने पूर्वजों के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि आप वंशावली विशेषज्ञ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है? इसे आरंभ करने के लिए केवल प्रेम और पर्दे के पीछे के उन लोगों की मदद करने की सच्ची इच्छा होनी और स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते। आसपास देखें। ये कार्य एक आत्मिक कार्य है, पर्दे के दोनों ओर से सहयोग का संपूर्ण प्रयास, जहां दोनों ओर से मदद दी जाती है। आप संसार में कहीं भी हों, प्रार्थना, विश्वास, निश्चय, परिश्रम और कुछ बलिदान के साथ आप इसमें विशाल योगदान दे सकते हैं। आज से ही आरंभ करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रभु इस कार्य में आपकी मदद करेगा और इससे आप अनोखापन महसूस करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you could tell us when you have an article coming out." I responded,
मैंने जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम गिरजे की पत्रिका ही पढ़ते हो ना? उसने मुझे समझाते हुए लिखा कि उसकी 10 साल की बेटी पास हो गई थी। उसे मेलबॉक्स में Ensign मिली। वह घर में आई और इसे पढ़ा। फिर वह हमारे कमरे में आई और हमें अपना लेख दिखाया। मेरी पोती ने Ensign पढ़ी क्योंकि वह सीखना चाहती थी। उसने अपनी चुनने की स्वतंत्रता के अनुसार काम किया। प्रथम अध्यक्षता ने हाल में ही युवाओं के लिए नए सीखने के साधन को स्वीकृति दी है, जो युवा लोगों की सुसमाचार सीखने, जानने, बांटने की स्वाभाविक इच्छा को प्रोत्साहित देगी। ये नए साधन जनवरी में उपलब्ध होंगे। जब उद्धारकर्ता ने सिखाए थे, सीखने वाले की इच्छा सबसे बड़ी होती थी। उसने न केवल हमें यह दिखाया कि क्या सिखाना है, बल्कि यह भी कैसे सिखाना है। उसने सीखने वाले की जरूरत पर ध्यान दिया। उसने लोगों को स्वयं सच्चाई की खोज करने में मदद की। उसने हमेशा उनके प्रश्नों को सुना। ये नए सीखने के साधन हम सबों की उद्धारकर्ता के तरीके से हमारे घरों में और हमारी कक्षाओं में सीखने और सिखाने में मदद करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, हम उसके निमंत्रण मेरे पीछे होलो का जवाब देते हैं। जबकि नए साधन विकसित किए जा रहे थे, मैंने देखा सहायक संस्थाओं, सेमिनरी के मार्गदर्शक और शिक्षक माता पिता के संग मिलकर सलाह कर रहे थे ताकि वे सीखने वालों की जरूरतों को पूरा कर सकें। मैंने युवतियों को उनकी कक्षाओं में, युवकों को उनकी हारूनी पौरोहित परिषदों में और संडे स्कूल में युवाओं को अपनी चुनने की स्वतंत्रता का और स्वयं के लिए कार्य करने का उपयोग करते देखा है। एक युवा संडे स्कूल की शिक्षिका को चिंता थी कि वह दो स्वलीन युवकों को अपनी चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करके स्वयं के लिए काम करने में मदद कैसे करे। जब वह कक्षा के सदस्यों को जब यह बताने के लिए खड़ा हुआ, उसने क्या सीखा था? वे उसे सिखा रहे थे जो उद्धारकर्ता ने सिखाया था, लेकिन वे यह भी सिखा रहे थे कि उद्धारकर्ता ने कैसे सिखाया। जब उद्धारकर्ता सिखाता था, वह सीखने वालों के प्रति प्रेम के कारण ऐसा करता था, जैसा इस कक्षा के साथी ने अपने मित्र के लिए किया था। जब हम उसके वचनों को उसके तरीके से सीखते और सिखाते हैं, हम उसके निमंत्रण मेरे पीछे हो लो को स्वीकार करते हैं। हम एक समय में एक कदम लेकर उसके पीछे चलते हैं। प्रत्येक कदम के साथ हम उद्धारक कर्ता के निकट हो जाते हैं। हमें परिवर्तन होता है। प्रभु जानता था कि आत्मिक विकास एकदम नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जितनी बार हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम पूर्ण परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सभी सुसमाचार शिक्षा और अध्यापन का लक्ष्य परिवर्तन है। परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है, यह जीवन भर उद्धारकर्ता के समय के समान बनने का प्रयास है। एल्डर डॉलिन एच ओक्स ने हमें याद दिलाया कि जानना ही काफी नहीं है, परिवर्तित होने के लिए हमें करना और बढ़ना पड़ता है। इसीलिए परिवर्तन के लिए सीखना, जानना, करना और बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। उसी तरह परिवर्तन के लिए मुख्य सिद्धांत सीखना, सिखाने, कार्य करने के लिए निमंत्रण और वादा की गई आशीषों की जरूरत होती है। जब हम सच्चा सिद्धांत सिखाते हैं, हम सीखने वाले की समझने में मदद करते हैं। हम जब हम दूसरों को कार्य करने के लिए निमंत्रण देते हैं, हम उसकी सिद्धांत को करने या जीने में मदद करते हैं। और जब वे आशीषें आती हैं जिनका प्रभु ने वादा किया है, हमें परिवर्तन होता है। अलमा के समान हम नए इंसान बन जाते हैं। युवाओं के लिए नए साधनों का एक मुख्य लक्ष्य है युवाओं को यीशु मसीह के सुसमाचार में परिवर्तित होने में मदद करना। मैंने हाल ही में युवा संडे स्कूल में एक युवक को स्वयं के लिए सच्चाई की खोज करते देखा था। जब मैंने देखा कि उसे प्रायश्चित से संबंधित अपने जीवन के अनुभव को सोचने में कठिनाई हो रही है, मैंने उससे पूछा, क्या उसने कभी क्षमा को महसूस किया है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक बार जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, मैंने एक की नाक तोड़ दी थी। मैं इसके लिए दुखी था। मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा महसूस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं उसके घर गया और उससे कहा, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन मुझे मालूम था इतना ही काफी नहीं था, इसलिए मैंने प्रार्थना की और फिर मैंने महसूस किया कि स्वर्गीय पिता ने भी मुझे क्षमा कर दिया। मेरे लिए प्रायश्चित का यही मतलब है। जब उस दिन उसने कक्षा में अपने अनुभव को बांटा, उसने यूहन्ना 3:16 से पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने प्रायश्चित की शक्ति की गवाही दी। अब यह सिद्धांत इस युवक के लिए कोई कल्पना का विचार नहीं रहा, यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसने स्वयं से प्रश्न पूछा और फिर अपने चुनने की स्वतंत्रता के अनुसार कार्य किया। यह युवक अधिक परिवर्तित बन रहा था और वैसा ही उसकी कक्षा के साथी भी। उसने धर्मशास्त्रों के अध्ययन के द्वारा मुख्य सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया था। उसने उन पवित्र शब्दों को अपने स्वयं के जीवन के साथ जोड़ा और उन आशीषों की गवाही दी थी जो उन सिद्धांतों का पालन करने से मिली थी। जब हम यीशु मसीह के सिद्धांत को सिखाते हैं, हम धर्मशास्त्रों और आधुनिक भविष्यवक्ताओं के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्वास को मजबूती देने, गवाहियां बनाने और सभी को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने बनने में मदद के लिए हम पवित्र पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युवाओं के लिए सीखने के नए साधन उन सबकी मदद करेंगे जो उनका प्रयोग परमेश्वर के वचन समझने और जीने के लिए करते हैं। कोस्टा रिका में संतों को सिखाते समय मेरे हाथ में टीचिंग नो ग्रेटर कॉल की प्रति थी और मैंने पूछा, आप में से कितनों के पास इस पुस्तक की प्रति है? लगभग सभी ने अपने हाथ उठाए। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, और मैं सोचता हूँ आप इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, आगे की पंक्ति में बैठी एक बहन ने यह दिखाने के लिए हाथ उठाया कि वह इसे प्रतिदिन पढ़ती है। मैंने उसे आगे आने और समझाने के लिए कहा। उसने आगे आकर कहा, मैं मॉर्मन की पुस्तक रोज पढ़ती हूँ, फिर मैं टीचिंग नो ग्रेटर कॉल में से कुछ पढ़ती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को उसी प्रकार उत्तम तरीके से सिखा सकूँ जैसे मैंने सीखा। वह यीशु के वचन यीशु के तरीके से सीखना सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने यीशु के वचनों का अध्ययन धर्मशास्त्रों से किया और फिर अध्ययन किया कैसे उसके वचनों को सिखाए ताकि उसके बच्चे परिवर्तित बन सकें। सुसमाचार सीखने और सिखाने का उसका नमूना एकदम से नहीं हुआ। उसने कुछ करने का निर्णय लिया था और जितना अधिक वह करने के लिए जानना चाहती थी, उतना ही अधिक प्रभु ने उसे उसके मार्ग में चलने की शक्ति दी थी। प्रत्येक कदम के साथ वह उद्धारकर्ता के निमंत्रण मेरे पीछे होने को स्वीकार कर रही थी। मेरा बहने हुई गिरजे में 50 साल से अधिक सक्रिय नहीं था। 60 साल का होने तक उसने उद्धारकर्ता के पीछे होने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने उसकी मदद की। घर के एक शिक्षक ने उसे 22 साल तक हर महीने पोस्टकार्ड भेजा था। लेकिन वापस आने का निर्णय उसे स्वयं लेना था। उसे अपनी चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करना था। उसे उद्धारकर्ता के निमंत्रण उसके पीछे हो ले को स्वीकार करने की आवश्यकता थी और अब धर्म अक्षता में वे सेवा कर रहा है। हाल ही में हमने उन वीडियो को दिखाया जो सीखने के लिए नए साधनों का उपयोग करने में मार्गदर्शकों और अध्यापकों की मदद के लिए बनाए गए हैं। वीडियो देखने के बाद मेरे बहनों ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, जब मैं युवा था यदि जब मेरे पास होते तो शायद मैं गिरजे से नहीं भटका होता। कुछ हफ्ते पहले मैं एक युवक से मिला जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। मैंने पूछा क्या वे गिरजे का सदस्य है। उसने कहा कि वे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन जब मैंने उससे संडे स्कूल में अपनी बुलावट के विषय में कहा और बताया कि मैं जनरल कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूँ, उसने कहा, हे यदि आप बोल रहे हैं तो मैं उस सत्र को देखूंगा। मैं आशा करता हूँ आज वे कॉन्फ्रेंस देख रहा है। मैं जानता हूँ यदि वह देख रहा है तो उसने कुछ सीखा होगा। ये कॉन्फ्रेंस केंद्र परिवर्तन के लिए सीखने और सिखाने का विशेष स्थान है। जब हम उन संसाधनों को जीते हैं जो हमारे द्वारा समर्थित भविष्यवक्ताओं, दूरदर्शियों और प्रकटीकर्ताओं द्वारा सिखाए जाते हैं, हम उद्धारकर्ता के मार्ग को सीखते हैं। हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यह कॉन्फ्रेंस समापक के निकट है। मैं हर एक को जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु के निमंत्रण मेरे पीछे हो लो को स्वीकार कर उस कदम को लेने का निमंत्रण देता हूँ और पिता के नाम से मांगे कि हम उन बातों को समझ सकें। हम चाहते हैं प्रत्येक युवा समझे। हम चाहते हैं वे यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रतिदिन सीखें, सिखाएं और जिएं। प्रभु यही उसके सब बच्चों के लिए चाहता है। चाहे आप बच्चे हैं, युवा हैं या वयस्क हैं, मैं निमंत्रण देता हूँ, आओ और उसके पीछे हो लो, आओ और उसके पचिन्नों पर चलो। मैं गवाही देता हूँ हर कदम के साथ प्रभु हमें मजबूती देगा, बाकी का मार्ग तय करने में हमारी मदद करेगा। फिर जब बाधाएं आएंगी हम चलते रहेंगे, जब संदेह होगा हम चलते रहेंगे, कभी वापस नहीं मुड़ेंगे, हम कभी गिरजे से नहीं भटकेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि पिता परमेश्वर और उसका बेटा यीशु मसीह जीवित हैं। मैं गवाही देता हूँ कि उद्धारकर्ता निरंतर हमें मार्ग दिखाता है, जैसा उसने अतीत में यह कहते हुए किया, मेरे पीछे हो लो। हम उसके निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। हम सब एक कदम उद्धारकर्ता की ओर बढ़ाकर उसके वचन को उसके तरीके से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और जी सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम वास्तव में परिवर्तित हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Choir and congregation.
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ मिलकर गाएगी, Rejoice the Lord is King. स्तुति गीत के अंत में हम एल्डर मार्क्स बी नेश, डैनियल एल जॉनसन और डोन आर केल 70 के मैसेज सुनेंगे। उनके बाद एल्डर डेविड ए बेटनर 12 पीड़ितों की परिषद से होंगे। ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे की 182वीं अर्धवार्षिक जनरल कॉन्फ्रेंस थी।
Not long ago, several of us in the Nash family.
हाल ही में हम नाश परिवार में से कईयों ने हुयाना पिचको की चोटी पर चढ़ाई की. पैरो की पुरानी मचको पिचको की सबसे ऊंची चोटी को छोड़ती है. यह बहुत खतरनाक सीधी और भयानक हशियों से बड़ी चढ़ाई है. दुखद यहाँ पर सकरे सीधे रास्तों में बहुतों ने चढ़ाई करते समय गिरकर अपनी जान दी. ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए तब से हुयान पिचको के पहाड़ों पर मजबूत रस्सी जो चट्टानों को मजबूती से पकड़ सके की आवश्यकता होती है. हमने उन्हीं रस्सियों को पकड़ा था जैसे हम चढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने सुरक्षा पूर्वक शिखर पर पहुंचाया था. दृश्य अति अद्भुत था. हुयाना पिचू के रास्ते के समान हमारी नाश्वर यात्रा सीधी और कठिनाइयों से भरी है जिसमें स्वर्ग के पिता की मदद सफलतापूर्वक पूरी करने की आवश्यकता होती है. इस कारण से उसने सुसमाचार के नियम और धर्म विद्या बनाई है जो हमें उद्धारकर्ता और उसके बचने की शक्ति तक ले जाते हैं. इसका पहला नियम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास हुयाना पिचकू पर रस्सी के समान है. यदि हम उद्धारकर्ता की चट्टान पर मजबूती और बचाव के लिए पकड़े विश्वास हमारी सुसमाचार पथ पर सुरक्षा पूर्वक चढ़ाई करने में मदद करेगा. नाश्वरता की हर चुनौतियों से ऊपर उठाएगा और हमारे स्वर्ग के पिता की अद्भुत उपस्थिति में वापस ले आएगा. सारी बातें विश्वास द्वारा पूरी होती हैं. विश्वास दोनों कर्म करने का नियम और शक्ति है. यह विश्वास से किसी विषय का वास्तविक तत्व नहीं जाना जा सकता. इसलिए अगर तुम में विश्वास है तब तुम उसकी आशा करते हो जो सत्य तो है परंतु उसे देखा नहीं है. हमारे सिखाने के द्वारा ये एक दृढ़ लाभ है जो कि हमें कर्म करने की ओर ले जाता है. उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसार करने और प्रार्थना पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करने में यहाँ तक कि बलिदान और परेशानी के समय के दौरान में भी विश्वास हम तक परमेश्वर की सामर्थ्य को लाता है जिसमें अन्य बातें हैं जो अच्छी चीजों के आने की आशा दिलाती है. चमत्कार जो विश्वास की पुष्टि करता है जो आत्मिक और सांसारिक मामले में दैविक सुरक्षा देता है. एन रोले का जीवन गिरजे के शुरू के दिनों में एक अग्रामी महिला ने दर्शाया कैसे विश्वास का अभ्यास हमारे जीवनों में अच्छे के लिए प्रभाव डालता है. एक इंग्लैंड की विधवा बहन रावली में भविष्यवक्ता के पुकार के जवाब में सियोन को एकत्रित करने में अपने विश्वास का अभ्यास किया था. वह विली हस्कला कंपनी की एक सदस्य थी जिन्होंने 1856 में बर्फीले तूफान में हाथ गाड़ी को घसीटा था. जब वह उस जगह पहुंच गई जहां पर उसके 7 बच्चे सच में भूखे हो गए थे उसने लिखा था, ये बहुत दुखदायी था अपने बच्चों को भूखा देखना. रात हो रही थी और शाम का भोजन नहीं था. मैंने परमेश्वर से सहायता मांगी जैसे मैं हमेशा करती थी. मैं अपने घुटनों पर थी. 2 बिस्किट को याद करके जो समुद्र यात्रा में बच गए थे वे बड़े नहीं थे और बहुत ही सख्त थे जो तोड़े नहीं जा रहे थे. सच में 8 लोगों को उससे पूरा करना संभव था परंतु 5 रोटी और 2 मछली भी 5,000 लोगों को पूरा करने को काफी नहीं था. परंतु एक चमत्कार के द्वारा यीशु ने यह कहा था, तो परमेश्वर की मदद से कुछ भी असंभव नहीं है. मुझे बिस्किट मिले और उन्हें डच ओवन में रख दिया और पानी से भर दिया और परमेश्वर से आशीष मांगी थी. तब मैंने पैन को कोयले पे रख दिया. जब मैंने कुछ देर बाद ढक्कन हटाया मैंने पाया कि पैन खाने से भरा हुआ था. मैं अपने परिवार के साथ घुटनों पर परमेश्वर का उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करने लगी थी. उस रात मेरे परिवार के पास पर्याप्त भोजन था. एन रोली ने सुसमाचार को बहुत व्यक्तिगत बलिदान से जिया था. सहायता की आवश्यकता और उसके लिए प्रार्थना में मांगा क्योंकि उसके विश्वास से वह आशा से भर गई थी और चमत्कारी तरीके से उसके परिवार को भोजन प्राप्त हुआ था. प्रभु ने उसे भी आशीष दी थी महत्वपूर्ण आत्मिक योग्यता के साथ जो अंत तक विश्वास में थी. ऐसा होने पर भी भविष्य के लिए उसने चिंता न की कि कैसे वे अगले दिन अपने बच्चों को खिलाएगी. इसके बावजूद उसने प्रभु के ऊपर धैर्य रखा. आशा के साथ आगे बढ़ती गई जैसे सुंदर स्तुतिगत व्यक्ति करता है.
The night is dark, and I am far from home. Lead thou me on.
keep thou my feet. I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. We too can exercise such faith in the Lord, believing and
ऐसा विश्वास रख अभ्यास कर सकते हैं. विश्वास करना और भरोसा रखना, ऐसा हमारा नेक और अटल परमेश्वर हमें हमारी परिस्थिति उसके समय अनुसार अपनी चमत्कारी शक्ति से आशीषित करता है. जैसा हम करते हैं, हम भी परमेश्वर का हाथ सुस्पष्टता से हमारे जीवनों में देखते हैं. प्रभु हमें आज्ञा देता है कि हम विश्वास का कवच, जिसके साथ हम दुष्ट के सारे क्रोध को ठंडा कर सकते हैं. शैतान ऐसी चीजों जैसे शंका, डर या पाप, जो हमें विश्वास से परे और सुरक्षा जो वह देता है से दूर करता है. चलो इन चुनौतियों से विश्वास को परखें, ताकि हम उसे पहचान सकें और उन पर ध्यान ना दें. पहला, प्रभु या उसके सुसमाचार पर अविश्वास परमेश्वर की आत्मा को रोकने का कारण होगा. प्रभु का शंका के लिए विषाणुशक पदार्थ साधारण है. जैसे राजा बिन्यामीन ने घोषित किया था, परमेश्वर पर विश्वास करो कि वो है, और ये भी विश्वास करो कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुओं को उसने रचा है. विश्वास करो कि स्वर्ग और पृथ्वी पर उसमें संपूर्ण विवेक है और वह सर्वशक्तिमान है. विश्वास करो कि जो कुछ प्रभु जानता है वह मनुष्य नहीं जानता. यदि अविश्वास या शंका के कारण आप अपने विश्वास में डगमगाए, याद रखें कि यहाँ तक प्राचीन प्रेरित ने प्रभु से याचना की, हमारा विश्वास बढ़ा. मन में सोचिए कि विश्वास और विवेक एक दूसरे के जरूरी साथी हैं. निम्न समानता पर विचारें, विश्वास और विवेक हवाई जहाज के पंखों के समान है. हवाई जहाज के संतुलन बनाए रखने को दोनों का आवश्यकता होना जरूरी है. यदि आपके दृष्टिकोण से कारण विश्वास के विरुद्ध लगता है, रोकें और याद करें कि हमारा दृष्टिकोण सीमित है प्रभु की तुलना के. कभी विश्वास को ना छोड़ें, तब आप एक हवाई जहाज के पंखों को खोल सकते हैं, बल्कि विश्वास का बीज का पोषण कर और आशा की अनुमति, यह आपकी आत्मा के लिए लगड़ की तरह होता है. तभी तो हमें आज्ञा दी गई है, सीखना तलाशें अध्ययन के द्वारा और विश्वास से भी. याद रखें, विश्वास आगे निकलता और चमत्कार करता है, जिसका हमारे पास हमारे अनुभव की कोई तुरंत व्याख्या नहीं होती है. जैसे डच ओवन दो बिस्कुट के भोजन से भर गया था, या संभावना कि विश्वास अंत तक संभव है. दूसरा, डर से विचलित करना और उद्धारकर्ता में विश्वास को भीतर से क्षति पहुंचाता है. प्रेरित पत्रस ने प्रभु की ओर देखकर तूफानी रात में और पानी पर चला था. जब तक वह उसे देखता रहा और हवा को देखकर डर गया, और वह तूफानी समुद्र में डूबने लगा. वह लगातार चलता रहता यदि वह डरता नहीं, ना कि प्रचंड हवा और लहरों से. अपने जीवन में डर उस पर ध्यान दे. प्रभु हमें आमंत्रित करता है, अपने सारे विचारों में मुझे देखो, शक ना करना, डरना नहीं. तीसरा, पाप हमारे जीवन की आत्मा की उपस्थिति को कम करता है, और पवित्र आत्मा के बिना हमारी आत्मिक शक्ति कम हो जाएगी, जो विश्वास के अभ्यास से आती है. ये अच्छा है कि हम विश्वास पर अभ्यास करें, बुरे उपहारों को, रुष्ट वस्तुओं को छुओ भी नहीं, और लगन परिश्रम से आज्ञाओं का पालन करें. ऐसा न हो कि तुम्हारा विश्वास तुमको असफल करे और तुम्हारे दुश्मन तुम पर विजयी हो. अगर पाप तुम्हारे जीवन पर दाग लगाए, मैं तुम्हें अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. विश्वास से पश्चाताप करो, और उद्धारकर्ता प्रायश्चित के द्वारा तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन को चंगा करेगा. भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार अपने वचनों को पूरा करता है, और हमारी हर चुनौतियों से ऊपर उठाने में हमारे साथ काम करता है. उसने ऐसा एन रोल के लिए भी किया था, और सभी राष्ट्र में अपने लोगों के और प्रत्येक उम्र और वंश साथ भी किया है, क्योंकि वह चमत्कारी परमेश्वर है और बदलता नहीं. वह वैसे ही हम में से प्रत्येक को आशीष देगा, आशा, सुरक्षा और शक्ति उसमें हमारे विश्वास अनुसार. प्रभु यीशु मसीह में अटल विश्वास जैसे हिरना पिचकू में पद की तारों समान आप और आपके प्रिय जनों को हमारे मुक्तिदाता और उसके तुलना किए बिना बचाने की शक्ति का लगड़ उसी चट्टान पर डालेंगे। भविष्य उज्जवल है आपके विश्वास की तरह। मैं गवाही देता हूँ कि उत्कृष्ट आशापूर्ण सच्चाई और हम में से प्रत्येक को आमंत्रित दृढ़ता के साथ प्रभु में विश्वास से आगे बढ़ने का देता हूँ। कुछ भी ना डगमगाएगा। मैं जानता हूँ कि उद्धारकर्ता जीवित है। वह हमारे विश्वास का उत्पादक और अंत करता है और उन्हें खोजने की सम्मति देता हूँ कि उसे खोजें। मैं यीशु मसीह के नाम से गवाही देता हूँ। आमीन।
Those of us who have entered into the water,
हम सब जिन्होंने बपतिस्मे के जल में प्रवेश किया है और पवित्र आत्मा का उपहार पाया है, ये अनुबंध किया है कि हम अपने ऊपर यीशु मसीह का नाम धारण करने के इच्छुक हैं, या अन्य शब्दों में हम अपने आप को प्रभु का शिष्य घोषित करते हैं। हम इस अनुबंध को प्रत्येक सप्ताह नया करते हैं जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं और हम इस शिष्यता का प्रदर्शन जीवन जीने के द्वारा करते हैं। ऐसी ही शिष्यता को हाल की घटनाओं में मैक्सिको में सुंदर ढंग से दिखाया गया। उत्तरी मैक्सिको में फल उगाने वाले समाज के लिए यह एक सुंदर बसंत का मौसम था। फलों के वृक्ष फूलों से भरे थे और भरपूर फसल की बहुत अधिक आशा थी। कर्ज चुकाने, नए औजार लेने और नए बाग लगाने और निजी जरूरतें जैसे परिवार के सदस्य की स्कूल की फीस देने की योजनाएं पहले से बनाई जा चुकी थीं। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की योजनाएं भी बनाई गई थीं। पूरी तरह आशा भरा माहौल था। तभी मार्च के अंत में एक सोमवार शाम सर्द तूफान आया और बर्फ गिरने लगी। सुबह 3 बजे तक बर्फ गिरती रही। फिर जब आसमान खुला, तापमान तेजी से गिरने लगा। पूरी रात और सुबह होने तक फलों की फसल से जो कुछ बचाया जा सकता था उसे बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका था और फसल पूरी तरह से जम चुकी थी। इस साल कोई भी फल तोड़ने और बेचने के लिए नहीं बचा था। कल तक की उन सभी योजनाओं, आशाओं और सपनों की दुखद और निराशजनक नुकसान के साथ मंगलवार की सुबह हुई। उस भयानक मंगलवार की सुबह के संबंध में मुझे जॉन हैच कोलोनिया जुआरेस चिल्ला हुआ मंदिर की अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार की पत्नी का ईमेल मिला। मैं उस ईमेल के हिस्से में पढ़ता हूँ। जॉन सुबह 6:30 बजे उठकर यह देखने के लिए मंदिर की ओर गया कि क्या हमें आज सुबह का सत्र रद्द कर देना चाहिए। वह ये कहते हुए वापस आया कि पार्किंग की जगह और सड़क साफ थी, इसलिए हमने निर्णय किया हम सत्र करेंगे। हमने अंदाजा लगाया कि कुछ कार्यकर्ता जिनके बाग नहीं हैं वे आएंगे और हम सभी कार्यकर्ताओं को सत्र में लगा देंगे। एक के बाद एक लोगों को आते देखकर बहुत प्रेरणा मिली। वे सब आ गए, रात भर के जागे हुए और जानते हुए कि वे अपनी फसल गंवा चुके थे। मैं अपनी तैयारी की सभा के दौरान उन्हें देख रहा था और वे जागे रहने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बात पर विचार करने की बजाय कि उनके पास न आने का इच्छा का अच्छा कारण था, फिर भी वे आए और सत्र में 38 लोग थे संपूर्ण सत्र। यह हमारे लिए एक प्रेरणादायक सुबह थी और हमने स्वर्गीय पिता को उनके अच्छे लोगों के लिए धन्यवाद दिया जो अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। उस सुबह मैंने वहाँ एक विशेष आत्मा को महसूस किया। मैं निश्चित हूँ कि प्रभु भी यह जानकर खुश हुआ था कि हम उसके घर को प्यार करते हैं और हमने महसूस किया कि उस कठिन सुबह मंदिर में जाना एक अच्छा स्थान था। कहानी यही समाप्त नहीं होती। जिन्होंने अपने फलों की फसल खोई थी उनमें से अधिकतर के पास कुछ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध थी जिस पर वे उस मौसम की अन्य फसलें उगा सकते थे, जैसे मिर्च या बीन्स। इन फसलों से कुछ पैसा मिल सकता था जिससे अगले साल की फलों की फसलों होने का गुजारा हो सकता था। परंतु एक भाई था जिसके परिवार में छोटे बच्चे थे, उसके पास अतिरिक्त जमीन नहीं थी और उसके पास साल भर गुजारा करने को पैसा भी नहीं था। समाज में आन लोगों ने इस भाई की कठिन परिस्थिति को समझा और उसी पहल पर और अपने खर्च से जमीन का प्रबंध किया। अपने स्वयं के औजारों का उपयोग करते हुए जमीन तैयार की और उसको लगाने के लिए मिर्च के पौधे दिए। मैं इन लोगों को जानता हूँ जिनके बारे में मैंने अभी कहा है। उन्हें जानने कारण जो उन्होंने किया मैं उससे चकित नहीं हुआ, लेकिन जो उन्हें नहीं जानते शायद दो प्रश्न पूछेंगे। दोनों क्यों शब्द से शुरू होते हैं? वे मंदिर में अपना कर्तव्य और सेवा करने क्यों आए थे जबकि वे पूरी रात जागे हुए थे, ये जानते हुए कि पूरे साल भर उनकी आमदनी का अधिकतर भाग वे खो चुके थे? क्यों अपने सीमित और जरूरी संसाधनों से वे किसी अन्य जरूरतमंद की मदद करने को तैयार थे जबकि वे स्वयं भी आर्थिक रूप से इतनी तंगहाली में थे? यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह का शिष्य होना क्या होता है तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे। मसीह का शिष्य होने का अनुबंध बनाना जीवन भर की प्रक्रिया का आरंभ है और यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होता है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते और वैसा करने का प्रयास करते हैं जो वह हमसे करवाना चाहता है और अपने साथियों की वैसी सेवा करते जैसे वह अपनी सेवा करता, तो हम निसंदेह उसके समान बन जाते हैं। उसके समान बनना, उसके लिए होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य और इरादा और निश्चित रूप से सच्ची शिष्यता की सटीक परिभाषा है। जैसा उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों से पूछा था जब हम अमेरिकी महाद्वीप में गया था, इसलिए तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जैसे वैसे जैसे मैं हूँ। उद्धारकर्ता के समान बनना कोई सरल काम नहीं है, विशेषकर उस संसार में जिसमें हम रहते हैं। हम लगभग प्रतिदिन अपने जीवन में बाधाओं और दुखों का सामना करते हैं। इसका एक कारण है और यह नश्वरता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। जैसा हम अब्राहम 3:25 में पढ़ते हैं, और हम यहाँ उसकी जांच करेंगे कि क्या वे उन सब कामों करते हैं जिन्हें प्रभु उसके परमेश्वर ने आज्ञा दी उन्हें दी है। इन जांच और परीक्षाओं की प्रकृति और प्रभाव अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इनका सामना किए बिना इस नश्वरता से नहीं गुजरेगा। अक्सर हम परीक्षाओं को फसल या नौकरी के नुकसान, प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, शारीरिक, मानसिक या भावात्मक असमर्थता, गरीबी या मित्रों के नुकसान के रूप में देखते हैं। फिर भी उपयुक्त लगने वाले लक्ष्य प्राप्त करना इनके स्वयं के खतरे, अनुपयोगी घमंड ला सकता है। जहाँ परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक हम इंसान के सम्मान की चाहत रखते हैं, इनमें शामिल हो सकते हैं संसारिक लोकप्रियता, लोक प्रसिद्धि, शारीरिक साहस, कलात्मक या खेलकूद की प्रतिभा, समृद्धि और संपत्ति। इन परीक्षाओं के संबंध में हम में से बहुतों की वही अनुभूतियाँ हो सकती हैं जैसे तेवई ने फिडलर ऑन द रूफ में व्यक्त की हैं। यदि संपत्ति श्राप है तो परमेश्वर मुझे इसका दंड दे और मैं इससे कभी मुक्त ना हूँ। लेकिन इस प्रकार की परीक्षाएं और भी अधिक भयभीत करने वाली और खतरनाक हो सकती हैं, और इनसे अन्य प्रकार परीक्षाओं के मुकाबले उबर पाना अधिक मुश्किल होता है। हमारी शिष्यता सामना की जाने वाली परीक्षाओं के द्वारा विकसित और सिद्ध नहीं होती, बल्कि इससे कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। जैसा कि हमें अध्यक्ष आर्यन ने सिखाया है, जीवन की महान परीक्षा यह जांच करना है कि क्या हम जीवन के तूफानों के बीच परमेश्वर के आदेशों पर ध्यान देते उसका पालन करते हैं। यह तूफानों का सामना करना नहीं है, लेकिन जब ये जोर पकड़ते हैं उस समय सही का चुनाव करना है। और जीवन का दुखद पहलू इस परीक्षा में असफल होना और इस प्रकार महिमा में अपने स्वर्गीय घर वापस जाने के योग होने में असफल होना है। मैं 23 नाती पोतों का गर्वित दादा और नाना हूँ। जब वे बहुत छोटे थे तभी से वे मुझे हमेशा आनंद सच्चाई की अपनी समस्या अचंभित करते आए हैं। जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था मैंने उनमें से प्रत्येक से कहा था, मुझे शिष्य या यीशु मसीह के चेले होने का क्या मतलब होता है कि एक बहुत संक्षिप्त परिभाषा बेचें। मुझे 8 साल के बेंजामिन से यह जवाब मिला, यीशु मसीह का शिष्य होना एक उदाहरण बनना है। इसका मतलब प्रचारक बनना और प्रचारक बनने की तैयारी करना है। इसका मतलब दूसरों की सेवा करना है। इसका मतलब तुम धर्मशास्त्र पढ़ते और अपनी प्रार्थना करते हो। इसका मतलब तुम सप्त का दिन पवित्र रखते हो। इसका मतलब तुम पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हो। इसका मतलब गिरजे जाना और मंदिर जाना है। मैं बेंजामिन से सहमत हूँ। शिष्यता करना और होना का विषय है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते और अपने साथियों की सेवा करते हैं, हम यीशु मसीह के बेहतर शिष्य बन जाते हैं। उसकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता और सपर्मर से पवित्र आत्मा की संगति के साथ साथ शांति, आनंद की आशीषें और सुरक्षा मिलती है, जो कि परमेश्वर के इस तीसरे सदस्य द्वारा हमेशा होती है। अंततः पूर्ण रूप से इसकी इच्छा को मानने से हमें उद्धारकर्ता के जैसे बनने में मदद मिलती है। फिर से उसके समान बनना और उसके साथ एक होना अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य और इरादा और निश्चित रूप से सच्ची शिष्यता की सटीक परिभाषा है। शिष्यता वह है जिसे कोलोनिया जुआरेज मंदिर में और इसके आसपास के खेतों में देखा था, जब विश्वास में भाइयों बहनों ने हृदय विदारक परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था। मैं गवाही देता हूँ कि जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते, दूसरों की सेवा करते, अपनी इच्छा को उसकी इच्छा पर न्यौछावर कर देते, हम वास्तव में उसके सच्चे शिष्य बन जाते हैं। मैं इसकी गवाही यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। आमीन।
I grew up in Rexburg, Idaho, where I was influenced.
मैं रेक्सबर्ग, आइडाहो में बड़ा हुआ था, जहाँ पर मुझे प्रभावशाली परिवार, दोस्तों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों द्वारा अद्भुत तरह से सिखाया गया था। हम सभी के जीवनों में विशेष अनुभव होते हैं, जो कि हमारे आत्मा को छू जाते हैं और चीजों को हमेशा के लिए भिन्न करते हैं। मैं हमेशा से गिरजा में सतर्क और हारूनी प्रवृत्ति के द्वारा प्रगति पर था। जब मैं युवावस्था में था, भाई जेकब, मेरे शिक्षक ने पूछा कि प्रभु भोज के दौरान हमारे दिलों में क्या विचार आए थे, और एक कार्ड पर उनको लिखना था। मैंने अपना कार्ड लिया और लिखना शुरू किया था। सूची में पहला बास्केटबॉल खेल हमने एक रात पहले ही जीता था, और फिर खेल के बाद डेट आई और सूची बढ़ती गई। दूर कहीं हल्का सा और सच में उभर जो हुआ नहीं, यीशु मसीह का नाम था। प्रत्येक रविवार कार्ड को भरा जाता था। युवा हारूनी पुरोहित्य धारक होने के लिए प्रभुबोज और प्रभुबोध सभा ने एक नया फैला हुआ और आत्मिक अर्थ ले लिया था। मैं उत्साह से ही रविवार का इंतजार करता और प्रभुबोज लेने के लिए अवसर देखता। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित की समझ ने मुझे बदल दिया था। हर रविवार से इस दिन तक, जैसे मैं प्रभुबोज लेता हूँ, मैं अपने कार्ड को देख और सूची को दोहरा सकता हूँ। हमेशा से मेरी सूची पर अब सबसे पहले मानव जाति का उद्धार करता है। नया नियम में हम वो समय पढ़ते हैं जबकि उद्धारकर्ता और उसके शिष्य फसा के पर्व में ऊपर के कमरे में मिले थे। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति में उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बढ़ाया जाता है, नई वाचा है। यीशु ने नफाइटियों से अपनी भेंट के दौरान प्रभु भोज धर्म विधि को भी नियुक्त किया था। मैं इन दोनों घटनाओं के महत्व को जान पाया था। अध्यक्ष डेविड ओमकी ने कहा था, मैं जोर देने से प्रभावित महसूस किया था कि प्रभु ने गिरजा में बहुत ही महत्वपूर्ण सभा की नियुक्ति की, और वो है प्रभु भोज सभा। यदि हम अच्छी तरह से प्रभु भोज के लिए तैयार हों, यह हमारे जीवन बदल सकता है। मैं 5 नियमों का सुझाव दूंगा जो कि हमारे जीवन को आशीष देगा, जैसे हम योग्यता के साथ प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के प्रायश्चित के लिए भारी होने का एहसास। प्रभु प्रभुभोज कभी भी मेरे लिए अधिक नहीं था जब तक मैं डीकन में नियुक्त नहीं हुआ था। उस दोपहर को मैंने पहली बार प्रभुभोज बांटा था। सभा से पहले एक डीकन ने मुझे चेतावनी दी, भाई श्मिट पर ध्यान देना, तुम्हें शायद उन्हें जगाना पड़े। आखिरकार प्रभुभोज बांटने के लिए भाग लेने का समय आ गया था। पहली 6 पंक्तियों को मैंने शांति से निपटाया। बच्चे और वयस्कों ने रोटी ली बिना किसी के ध्यान दिए या परेशानी के। तब मेरे पास 7वीं पंक्ति आई, पंक्ति जहाँ पर भाई स्मित हमेशा से बैठते थे। परंतु मैं आश्चर्यचकित था, वे सोने के बजाय जाग रहे थे। असमान से जैसे मैंने दूसरों की सेवा की, उन्होंने भी रोटी जो बड़े ही गहन विचार और श्रद्धा के साथ ली थी। कुछ मिनटों बाद मैंने दोबारा से सातवीं पंक्ति में पानी बांटते हुए पाया। इस समय मेरे दोस्त सही थे। भाई स्मिथ सिर नीचे किए हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। वह यकीनन सो रहे थे। मैं क्या करता और कह सकता था। मैंने उनकी पंक्ति को एक क्षण को देखा, सालों से मुरझाए और थके हुए परिश्रम करने वालों को। वह व्यवस्था में गिरजे से जुड़े थे और उनके छोटे से जर्मन शहर को बहुत पीड़ यातनाएं झेलने का अनुभव था। मैंने कई बार गवाही में कहानियां सुनी थी। मैंने आखिरकार उनके कंधों को धीरे से हिलाकर उठने की आशा की थी। जैसा मैंने करना चाहा, उनका सिर धीरे से ऊपर उठा था। वहां आंखों से आंसू उनके गालों पर गिर रहे थे और जैसे मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने प्रेम और आनंद को देखा। उन्होंने शांति से ऊपर उठकर पानी लिया था। यहाँ तक कि उस वक्त मैं सिर्फ 12 वर्ष का था, आज भी मैं उस एहसास को याद करता हूँ जैसा मैंने इस बूढ़े आदमी में प्रभु भोज लेते देखा था। मैं बिना शक के जानता था कि उन्होंने प्रभु भोज के बारे में कुछ महसूस किया था जिसे मैंने कभी नहीं महसूस किया था। तब मैं प्रेरित हुआ कि मैं भी उस एहसास को महसूस करना चाहता था। भाई स्मिथ ने स्वर्ग से वार्तालाप की और स्वर्ग ने उनसे वार्तालाप की। स्मरण करें कि हम बपतिस्मा अनुबंधों का नवीकरण करते हैं। दूसरा नियम याद रखें कि हम बपतिस्मा अनुबंधों का नवीकरण करते हैं। परमेश्वर के दल में आओ और उसके लोग कहलाओ। एक दूसरे के बोझ उठाओ। दुख करो उनके साथ जो दुखी हैं। परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़े हो। टूटे हृदय और पश्चातापी आत्माओं को आने दो। इच्छानुसार यीशु मसीह के नाम को उनके ऊपर लेने दो। अंत तक उन्हें सेवा करने को प्रेरित करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और हमेशा उसका स्मरण करें। प्रभु भोज प्रार्थना इन अनुबंधों को स्मरण करती है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम अपने वादों का नवीनीकरण कर उन अनुबंधों को जीते हैं। मैं इसमें विश्वास करता हूँ। प्रभु भोज प्रार्थना को अपने दिलों में और मनों में याद करने की सराहना करूँगा। यह हमारी मदद बपतिस्मा अनुबंधों के नवीनीकरण करने में करेगा, चाहे हम 8 या 80 साल के हों। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, मैं आशा करता हूँ कि हम उस दिन और अनुबंध जिन्हें हमने बनाया है कभी ना भूलें। तीसरा, प्रभु भोज के दौरान हम अपने पापों की क्षमा को महसूस कर सकते हैं। यदि हम प्रभु भोज से पहले पश्चाताप करने में समय व्यतीत करते हैं, हम जब प्रभु भोज सभा से जाते हुए साफ और शुद्ध महसूस करेंगे। अध्यक्ष पैकर ने कहा था, प्रभु भोज क्षमा याचना के नवीनीकरण का दौर है। हर रविवार जब प्रभु भोज बांटता है, यह कार्यक्रम होता है क्षमा याचना का। हर रविवार आप अपने को साफ करते हैं ताकि यदि आप मर भी जाए तो आपकी आत्मा साफ होगी। योग्यता के साथ प्रभु भोज लेना हमें राजा बिन्यामीन के समान महसूस करता है, जो खुशी से भर गए थे, अपने पापों से ऊपर उठ गए थे और अपनी आत्मा में आनंदित थे। चौथा नियम है कि हमें प्रभु भोज सभा के दौरान हमारी समस्याओं का समाधान के लिए प्रेरणा प्राप्त। जब मैं मिशन अध्यक्ष था बोलिविया में, मेरियान और मैं मिशन अध्यक्ष की सेमिनार में अध्यक्ष आयरिन के साथ भाग लेने को आशीषित हुए थे। उस सभा में उन्होंने सिखाया था कि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं सभा से लाभ उठाने के लिए। हमें अपनी समस्याओं के साथ बच्चों के समान नर्म होकर सीखना और परमेश्वर के बच्चों की सहायता करने की कामना के साथ आना चाहिए। जैसे हम प्रभु भोज सभा में नम्रता से आते हैं, हमें अपने प्रतिदिन की समस्याओं के साधन के एहसास के प्रभाव को महसूस करते हैं। हमें तैयारी के साथ आना चाहिए, सुनने की इच्छा और कभी न भटकने की तैयारी से। धर्मशास्त्रों में हम पढ़ते हैं, परंतु देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अपने मन में इन्हें पढ़ना चाहिए, तब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि यदि ये सही है, और यदि ये सही है मैं इस कारण से कि तुम्हारे अंदर को जल उठेगा, इसलिए तुम्हें महसूस करना होगा कि ये सत्य है। हम जान सकते हैं। पांचवा नियम, योग्यता से प्रभु भोज में भाग लेना हमें सहायता देती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की। अपने नफाइटियों के भेंट के दौरान यीशु ने कहा था, जो इस रोटी को खाता है वह अपनी आत्मा के लिए मेरे शरीर का मांस खाता है, और जो इस साखरस को पीता है वह अपनी आत्मा के लिए मेरा रक्त पीता है, और उसकी आत्मा कभी भी ना तो भूखी रहेगी और ना ही प्यासी रहेगी, परंतु सदा तृप्त रहेगी।
उनसे वादा किया गया था कि यदि वह योग्यता के पीछे भूखे और प्यासे हैं, वह पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे।
Elder Melvin J. Ballard said, I am a witness that there is a spirit attending the administration of the sacrament that warms the soul from head to foot. Comfort and happiness come to the soul that is worthy and truly desirous of partaking of this spiritual food. We will be blessed.
हम आशीषित हैं, हम यीशु मसीह की प्रायश्चित के लिए आभारी हैं, जैसे हम हर हर सप्ताह प्रभु भोज लेते हैं।
मैं आपका आभार यीशु मसीह की प्रायश्चित के लिए व्यक्त कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ वे जीवित है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My message focuses upon the relationship between receiving.
मेरा संदेश ये गवाही प्राप्त करना कि यीशु ही मसीह है और उसमें वह उसके सुसमाचार में परिवर्तित होने के बीच के संबंध में कर देते हैं। आमतौर पर हम गवाही और परिवर्तन के विषय पर अलग से और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। हालांकि जब हम इन दोनों विषयों को एक साथ जोड़कर विचार करते हैं तो हम बहुमूल्य दृष्टिकोण और महत्व दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। मैं पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक निर्देश देने में सुधार करने की निमंत्रण देता हूं। जब यीशु फिलिप्पी कैसरिया के तट पर आया था, उसने अपने शिष्यों से एक तीखा प्रश्न पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने कही, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट की है। जैसा पत्रस ने जवाब और उद्धारकर्ता के निर्देश से साबित होता है, गवाही प्रकटीकरण द्वारा प्राप्त आत्मिक सच्चाई और व्यक्तिगत समझ है। गवाही परमेश्वर का उपहार है और उसके सभी बच्चों को उपलब्ध है। यीशु मसीह के आवश्यक कड़ मात्रा विश्वास को जांच करके और वचन की नैतिकता को अमल में लेकर पवित्र आत्मा के आकर्षणों के आकर्षित होकर परमेश्वर की प्रति जागृत होकर कोई भी ईमानदार सच्चाई की खोज करने वाला गवाही प्राप्त कर सकता है। गवाही अधिक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लाती है और उद्देश्य आनंद का स्रोत है। आत्मिक सच्चाई और की गवाही की खोज करने और प्राप्त करने के लिए ईमानदार हृदय से पूछने, खोजने, खटखटाने, सच्ची इच्छा और उद्धारकर्ता में विश्वास की जरूरत होती है। गवाही की जरूरी अवयव यह जानना है कि स्वर्गीय पिता जीवित है और हमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है और सुसमाचार की परिपूर्णता पृथ्वी पर इन अंतिम दिनों के पूर्ण स्थापित हो गई है। जैसा उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों को अंतिम भोज में सिखाया था, उसने पत्रस से कहा था, शिमोन हे शिमोन, देखो शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं की तरह फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जा जब तू फिरे तो अपने भाइयों के स्थिर रहे। ये प्रभावशाली प्रेरित स्वामी के साथ बातें करता और घुमा करता था, कई चमत्कारों को देखा था और उसके पास उद्धारकर्ता का दिव्यता का मजबूत गवाही थी। फिर भी पत्रस और पवित्र आत्मा का परिवर्तित और शुद्ध करने की शक्ति और विश्वसनीयता से सेवा करने के उसे दायित्व विषय का यीशु जरूरत थी। यीशु मसीह के सुसमाचार को सारे हमारे प्राकृतिक स्वभाव से मूलभूत के स्थायी परिवर्तित और आवश्यक बनाता है जो कि उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के द्वारा होता है। सच्चा परिवर्तन व्यक्ति की भावना, हृदय और जीवन के परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने और उसके अनुसार चलने के लिए परिवर्तित लाता है और मसीह के शिष्य बनने के लिए करता है। परिवर्तन गवाही को नैतिक समर्थन देने वाला बड़ा गहन और विस्तृत आधार है। ये व्यक्तिगत पश्चाताप, आज्ञात कार्यता और परिश्रम के साथ परमेश्वर के प्रकटीकरण की परिणाम कोई भी ईमानदार सच्चाई की खोज करने वाला हृदय के महान परिवर्तन और आत्मिक रूप से परमेश्वर से जन्म आकर परिवर्तित बन सकता है। जब हम उद्धार और उत्कर्ष की धर्मविधियों और अनुबंधों का सम्मान करते हैं, मसीह में दृढ़ता आगे बढ़ते हुए और विश्वास में अंत तक धीरज धरते हुए, हम मसीह में नए प्राणी बन जाते हैं। परिवर्तन गवाही से उपहार के लिए स्वयं को और वफादारी को कृतज्ञता में परमेश्वर को दे देना है।
The Book of Mormon is filled with inspiring
की पुस्तक परिवर्तन के प्रेरणादायक विवरणों से भरी है। याकूब के वंशज अमलेकी ने घोषणा की थी, मैं चाहता हूं कि तुम मसीह के पास आओ, जो कि इज़राइल का एक मव पवित्र परमेश्वर है और उसके उद्धार और उसकी मुक्ति की शक्ति में भागीदारी बनो। हाँ, उसके पास आओ और अपनी पूरी आत्मा से उसे भेंट चढ़ा दो। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जानना कि यीशु ही मसीह है महत्वपूर्ण जरूरी है, लेकिन तन मन से उसके पास आना और अपनी संपूर्ण आत्मा को भेंट के रूप में देना के लिए मात्र जानने से अधिक की जरूरत है। परिवर्तन का हमारा संपूर्ण हृदय, हमारी संपूर्ण योग्यता, संपूर्ण मन और शक्ति की आवश्यकता होती है। राजा बेंजामिन के लोगों ने चिल्लाते हुए उसके उपदेशों का जवाब दिया, हाँ, हम उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें आपने हम से कहा है, और हम जानते हैं कि ये सब उचित है और सत्य है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु की आत्मा ने हमारे भीतर यानी हमारे हृदय में एक महान परिवर्तन कर दिया है कि हम शैतान के कार्य को नहीं करेंगे, लेकिन निरंतर भले कार्य की करेंगे। भले बोले गए वचनों को स्वीकार करने, उनकी सच्चाई को गवाही प्राप्त करने और मसीह में विश्वास करने से हृदय में महान परिवर्तन और सुधरने में बेहतर बनने और दृढ़ संकल्प पैदा होता है। परिवर्तित लेमनाइटियों की व्याख्या इलामन की पुस्तक में इस प्रकार की गई है, अपने कर्तव्य के मार्ग पर रहते हुए वे परमेश्वर के सामने सत्कर्ता से चले और उसकी आज्ञाओं, नियमों और उसके न्याय का पालन करते, और वे अथक परिश्रम करते हैं ताकि वे अपने बचे हुए भाइयों को सच्चे ज्ञान में ला सकें। जैसे ये उदाहरण दर्शाते हैं, हमने अपने हृदयों में महान परिवर्तन महसूस करना, निरंतर भलाई करने की प्रकृति, कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहना, परमेश्वर के सामने सावधानी पूर्वक चलते रहना, आज्ञाओं का पालन करना और धैर्य से सेवा करना परिवर्तन से जुड़े मुख्य गुण हैं। स्पष्ट रूप से ये विश्वसनीय लोग और उसकी शिक्षाओं से प्रति समर्पित हैं। बहुत बार परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ना कि एक बार की घटना जो किसी शक्तिशाली नाटकीय अनुभव मिलती है। पंक्ति दर पंक्ति, नियम दर नियम, धीरे धीरे और लगभग अदृश्य रूप से हमारे उद्देश्य, हमारे विचार, हमारे बोल और हमारे कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक लय में हो जाता है। प्रभु के परिवर्तन के लिए दृढ़ता और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। लेमनाइटी सैमुअल ने प्रभु को में परिवर्तित होने के लिए 5 मूल्य तत्वों को पहचान की थी, पवित्र भविष्यवक्ताओं की शिक्षा और भविष्यवाणी में विश्वास करना जैसे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, तीसरा पश्चाताप करना, चौथा हृदय में महान परिवर्तन को अनुभव करना, और पांचवा विश्वास में दृढ़ और अटल रहना। यह वह नमूना है जो परिवर्तन की ओर ले जाता है। गवाही सही परिवर्तन की शुरुआत और अति आवश्यक है। गवाही यात्रा का आरंभ है, ये मंजिल नहीं है। मजबूत गवाही वह आधार है जिस पर परिवर्तन का स्थापना होता है। आज जिस दौर में हम रहते हैं, उसके अंधकार और बुराई के तूफान में हमें सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ गवाही काफी नहीं है और नहीं होगी। गवाही महत्वपूर्ण और जरूरी है, लेकिन जिस आत्मिक शक्ति और सुरक्षा को हमें जरूरत है, उसे प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गिरजे के कुछ सदस्य जिनके पास गवाहियां थी डगमगा और भटक गए हैं। उनका आत्मिक ज्ञान और समर्पण उनके सामने आई चुनौतियों के सामने नहीं कर पाया। मुजाया के बेटों के प्रचारक कार्यों में गवाही और परिवर्तन के बीच संबंध के विषय में एक महत्वपूर्ण सबक स्पष्ट है। अमोन और उसके भाइयों के प्रचार द्वारा कई लोगों को सच्चाई का ज्ञान दिया गया। प्रकटीकरण और भविष्यवाणी की आत्मा के अनुसार परमेश्वर की शक्ति उनके बीच चमत्कार करने लगी। हाँ, जैसा कि प्रभु जीवित है, वैसे ही कई लेमनाइटियों के लिए ने उनकी बातों में विश्वास किया और कभी प्रतिभ्रष्ट न होने के लिए प्रभु के परिवर्तित हो गए। क्योंकि वे धार्मिक लोग बन गए थे, उन्होंने अपने विद्रोह के शस्त्र फेंक दिए ताकि वे फिर से परमेश्वर के विरुद्ध ना लड़ें। अब ये वही लोग थे जो प्रभु में परिवर्तित हुए थे। इन आयतों में दो मुख्य तत्वों के बताया गया, एक सच्चाई का ज्ञान जिसे गवाही भी कहा जा सकता है, और दूसरा प्रभु में परिवर्तित जिसे मैं उद्धारकर्ता और उसके सुसमाचार में परिवर्तित समझता हूँ। इस प्रकार गवाही और प्रभु में परिवर्तन दोनों का शक्तिशाली संयोग दृढ़ता और स्थिरता और आवश्यक सुरक्षा पैदा करता है। वे कभी पीछे नहीं हटे और अपने विद्रोह के शस्त्रों का समर्पण कर दिया, यानी उन्होंने कभी भी परमेश्वर से विरोध युद्ध नहीं किया। प्रिय, विद्रोह के शत्रु जैसे स्वार्थीपन, घमंड और अवज्ञाकारिता को अपने से अलग करने के लिए मात्र विश्वास करने या जानने से अधिक आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय, दीनता, पश्चाताप और विनम्रता के बाद विद्रोह के हमारे शत्रुओं के प्रतियोग होता है। क्या आप और मैं अभी भी विद्रोह के शस्त्रों का धारण किए हुए हैं जो हमें परमेश्वर के परिवर्तित होने से रोक रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें पश्चाताप करना जरूरत है। ध्यान दें कि लेमनाइट टी उन प्रचारकों के प्रति जिन्होंने उन्हें सिखाया था या गिरजे के शानदार कार्यक्रमों में प्रति परिवर्तन नहीं हुए थे, वे अपने मार्गदर्शकों के व्यक्तिगत के प्रति सांस्कृतिक विरासत बचाने या वे प्रभु के परिवर्तित हुए थे और सिद्धांत के प्रति, और वे कभी पीछे नहीं हटे। गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त सच्चाई की आत्मा का ज्ञान है। स्थाई परिवर्तन प्रकट की गई उस सच्चाई के प्रति श्रद्धा है जिसे हमने धार्मिक कारणों के लिए और उससे हृदय के साथ पाया है जो पाने के इच्छुक हैं, जानते हुए कि सुसमाचार वास्तव में गवाही का सुर है, का सार है। सुसमाचार के प्रति निरंतर सच्चे बने रहना परिवर्तन का सार है। हमें जानना चाहिए सुसमाचार सच्चा है और सुसमाचार के प्रति सच्चे बने रहें। गवाही और परिवर्तन के बीच संबंध दिखाने के लिए अब मैं कई संभावित व्याख्याओं में से एक 10 कुंवारियों के दृष्टांत को उपयोग करूंगा। 10 कुंवारियों जिनमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख ने अपने लैंप लिए और दूल्हे के से भेंट करने गई। कृपया विचार करें, इन कुंवारियों द्वारा उपयोग किया लैंप गवाही ने लैंप दी। मूर्ख कुंवारियों ने अपनी गवाही में के लैंप को लिया लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। मान ले तेल परिवर्तन तेल है, लेकिन समझदारों ने अपने परिवर्तन के लैंप के साथ अपनी कुपिया में गवाही का तेल भी भर लिया। जब दूल्हे ने आना था, देर हुई तो सब उगने लगी और सो गई, और आधी रात को धूमी मची, उसमें से भेंट करने लगी, लिए चलो। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने परिवर्तन के तेल को में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे लैंप बुझने वाले हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हम नहीं देंगी, क्योंकि ये हमारे लिए पूरा होगा ना तुम्हारे लिए। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। क्या समझदार कुंवारियां स्वार्थी थी और बांटना नहीं चाहती थी, या वे सही कह रही थी? परिवर्तन का तेल उधार में लिया जा सकता है? क्या आत्मिक शक्ति को जो निरंतर आज्ञाकारिता से मिलती है किसी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है? क्या धर्मशास्त्रों में परिश्रमी अध्ययन और मनन द्वारा प्राप्त ज्ञान की क्या विश्वनीय अंतिम दिनों के संत की सुसमाचार से मिली शांति किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो कष्ट या घोर चुनौती का सामना कर रहा हो? जैसा समझदार कुंवारियों ने जोर देकर कहा था, हम में से एक प्रत्येक अपने लिए तेल मोल लें। इन प्रेरित स्त्रियों ने लेन देन की सौदे का व्याख्या नहीं की थी, असल में इन्होंने हमारे अपने गवाही के लैंप को जलते रहने और परिवर्तन के तेल को पर्याप्त मात्रा में पाने की हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर जोर डाला था। यह बहुमूल्य तेल एक एक बूंद करके पंक्ति दर पंक्ति, नियम दर नियम, दृढ़ता और धैर्य से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही अंतिम समय में जल्दबाजी सी तैयारी की जा सकती है। इसलिए विश्वनाशीय बनिए, हमेशा प्रार्थना करते हुए लैम्प को तैयार और जलते रहने दो और तुम्हें पास तेल हो ताकि दूल्हे के आगमन के समय तुम तैयार रहो। मैं वादा करता हूँ कि जब हम सच्चाई के ज्ञान में आते हैं और प्रभु में परिवर्तित होते हैं, हम दृढ़ और अटल ही के लैम्प में उज्जवल प्रकाश और पर्याप्त परिवर्तन के तेल आशीषित होंगे। और जब हम हर एक अधिक पूर्णत से प्रणित होता है, हम अपना परिवारों और साथियों को मजबूती देंगे।
Of these truths I testify.
इन सच्चाइयों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रमाणित करता हूँ। आमीन।
At the conclusion of the conference,
सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का जिन्होंने इस सभा की तैयारी के लिए इतनी लगन से कार्य किया है का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम उन सब वार्ताकारों और जिनका उन्होंने संगीत उपलब्ध कराया का धन्यवाद करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस स्मॉनसन को सुनेंगे। उनके चर्चा के पश्चात गायन मंडली इस सम्मेलन का समापन गॉड वी विद यू टिल वी मीट अगेन गीत गाने के द्वारा करेगी। समापन प्रार्थना एल्डर चेरी डब्ल्यू की बोनस द्वारा दी जाएगी, जिन्हें कल 70 के परिषद के एक सदस्यता की सेवा कार्य से मुक्त किया गया। इस सम्मेलन को फिर स्थगित किया जाता है।
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक और प्रेरणादायक जनरल कॉन्फ्रेंस के समापन पर हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आत्मिक भोजन प्राप्त किया और उत्साहित हुआ हूँ और जानता हूँ कि आपने भी इस कॉन्फ्रेंस की विशेष आत्मा को महसूस किया है। हम उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसमें किसी भी रूप से भाग लिया है। सुसमाचार की सच्चाइयों को सुंदरता से सिखाया और महत्व दिया गया है। जब हम पिछले 2 दिनों के संदेशों को अपने हृदयों और जीवनों में अपनाते हैं, हमें आशीषें मिलती हैं। हमेशा की तरह इस कॉन्फ्रेंस की कार्यवाहियां इन साइन और लिया होना के आने वाले अंकों में उपलब्ध होंगी। मैं आपको इन वार्ताओं को एक बार फिर से पढ़ने और उनके भीतर के संदेशों पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैंने अपने स्वयं के जीवन में पाया है कि जब मैं इन संदेशों को गहराइयों से अध्ययन करता हूं, मुझे इन प्रेरणादायक संदेशों से और अधिक ज्ञान मिलता है। द्वीपों और सागरों के पार सभी स्थानों पर लोगों तक पहुंचने के लिए हमने व्यापक रूप से इस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण किया। यद्यपि हम आपसे बहुत दूर हैं, फिर भी हम आपकी आत्मा महसूस कर सकते हैं और आपको हमारा प्रेम और प्रशंसा भेजते हैं। उन भाइयों से जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से निर्मुक्त कर दिया गया है, मैं आपकी कई सालों की समर्पित सेवा के लिए हम सबकी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वे लोग अनगिनत हैं जिन्हें प्रभु के काम में आपके योगदान द्वारा आशीषें मिली हैं। भाइयों और बहनों, मैं हाल ही में अपना 50वां जन्मदिन मनाया था और मैं उन प्रत्येक साल का आभारी हूँ। जब मैं अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करता हूँ तो मुझे बहुत सी आशीषें देने के लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैंने आज सुबह अपने संदेश में बताया था, मैंने उसके हाथों को मुझे निर्देशन देते हुए महसूस किया है जब मैं विनम्रता से उसकी सेवा और आप सबों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। गिरजे के अध्यक्ष का पद जिम्मेदारियों से भरा है मैं अपने दो विश्वसनीय सलाहकारों का बहुत आभारी हूँ जो मेरे साथ मिलकर सेवा करते हैं, और जो भी कम प्रथम अध्यक्षता में आता है उसे मदद के लिए हमेशा तैयार और बेहद निपुण है।
Providing inspired assistance to them. I wish also to commend you, my brothers and sisters, wherever you are.
भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का, आप संसार भर में जहाँ कहीं भी हों, उन सब कामों के लिए जो आप अपने वार्ड और शाखाओं, अपने स्टेक और जिले में करते हों, सराहना करना चाहता हूँ। जब उन नियुक्तियों की स्वेच्छा से पूरा करते हों जो आपको दी जाती हैं, आप पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बनाने में मदद करते हों। हम सब हमेशा एक दूसरे की देखभाल करें, जरूरत के समय मदद करें, हम आलोचना न करें और दूसरों के बारे में निर्णय न लें, लेकिन हम सहनशील बने, हमेशा उद्धारकर्ता की प्यार भरी दया के उदाहरण की नकल करें, उसी रूप में स्वेच्छा से एक दूसरे की सेवा करें, हम अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को जानने की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें और फिर हम आगे बढ़कर मदद करें। जब हम अपने जीवन जीते हैं, हम धैर्य रखें, यद्यपि हम बढ़े हुए खतरों के समय में रह रहे हैं, परंतु हमसे प्रेम करता है और हमारे बारे में सोचता है हमारा ईश्वर। वो हमेशा हमारी तरफ होता है जब हम सही करते हैं, वो जरूरत के समय हमारी मदद करेगा। परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, समस्याओं को हम आशा नहीं करते और जिन्हें हम कभी नहीं चुनेंगे। हम में कोई भी इनसे मुक्त नहीं है। पृथ्वी के जीवन का उद्देश्य सीख कर, विकास कर, अपने पिता के समान बनना है, और अक्सर कठिन समय के दौरान हम अधिक सीखते हैं। बेशक पाठ कितना कष्टदायक क्यों न हो, हमारे जीवन खुशियों से भरे हो सकते हैं जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार की शिक्षाओं का पालन करते हैं। प्रभु ने कहा था, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस ज्ञान से हमें बहुत खुशी मिलती और मिलनी चाहिए। वो हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा। उसने हमारे पापों का मूल्य चुकाया। हम उसके उदाहरण की नकल करें, उसके बलिदान को स्वीकार करके उस जीवन को जीकर हम उसके प्रति अपने आभार को प्रकट करें जो हमें वापस जाने और एक दिन उसके साथ रहने के योग्य बनाएगा। जैसा कि मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में किया है, मेरी ओर से कि आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मुझे इनकी जरूरत है, मैं इन्हें महसूस करता हूँ। हम जनरल अधिकारियों के रूप में आप सबों को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय पिता की उत्तम आशीषें आपके साथ हों। अब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम 6 महीनों के लिए विदा होते हैं। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, तब तक परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Our dear Heavenly Father,
हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, हम बहुत इस सुंदर कंजल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, जो सच्चाई है जो हमें सिखाई गई, शानदार सुंदर गीत के लिए, और जो महसूस हमने किया हमारे और जो खुशी हमने प्राप्त करी। हम धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के लिए और पुनर्स्थान के लिए, भविष्यवक्ताओं थॉमस मानसन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा आशीष देते रहेंगे, और उसके सलाहकारों के और बारहों की परिषद के लोगों को उनके साथ। हम धन्यवाद करते हैं जानने के लिए अपने परमेश्वर के पिता को, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और आंसर देता है। हम आपके पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं, और उसके परिवार के लिए जो हमारे लिए है, उसके बलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए दिया। हम उसको हमेशा याद करेंगे, हम इस कॉन्फ्रेंस को हमेशा याद रखेंगे। हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 100
जय अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे की 182वीं अर्धवार्षिक जनरल कॉन्फ्रेंस थी। इस सत्र के वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। संगीत मॉर्मन मंडप गायल मंडली द्वारा दिया गया था। ये प्रसारण बोनावेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।